सर मैं ये एक्सीडेंट्स का क्या सीजन 2 देखने को मिल सकता है फ्यूचर में?
यहाँ प्रोड्यूसर्स को आइटम सॉन्ग नहीं थी क्योंकि यूपीएससी अब तक टाइमलाइन में भी शुरू नहीं हुआ था। यूपीएससी दीपेश
इन्होंने आपका आज का काम देखा है, बट आप
अरुण आपने बोला अरुण आपको सडनली याद आया कि
आपके घर में ससुराल सिमर का सीजन 2 चल रहा था।
10 दिन का रीजन था, उसका रीजन 10 मिलियन वाला नहीं था दोस्त। स्टूडियो हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलते
तो आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है?
दिसंबर तक 2 बहुत अच्छे शो और आएंगे मेरे, खुद आके एक्शन बोलना होता था।
सर मैं
कोई चपड़ चू नहीं, सर
सर मैं
ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता है।
सर मैं अनमोल ड्रेस के लिए कौन से हैं जिनके साथ आपने आपको काम करने में अच्छा लगता है?
यार मेरी
What is going on? I am Arjun Singh and welcome to my podcast hashtag that film guy जो कि इंडिया का सबसे creative podcast है। और आज हम लोग के साथ जो guest है ना, मतलब मैं थोड़ा सा nervous भी हो रहा हूँ सर आपके सामने, but ठीक है चलिए हम लोग शुरू करते हैं। and जो हम लोग के साथ आज guest हैं वो हैं director अपूर सिंह कार्की। I am sorry sir अगर मैंने आपका name थोड़ा wrong pronounce किया हो। तो सर द इंजीनियरिंग गर्ल्स कॉलेज रोमांस टीवीएफ एस्पिरेंट्स फ्लेम्स और आम आदमी फैमिली जैसी काफी हिट सीरीज सर ने डायरेक्ट करी हैं और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि सर आपके साथ आज कन्वर्सेशन करने वाले हैं हम लोग। तो हेलो सर,
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन।
यस सर, सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी से हम लोग शुरू करते हैं। सर आप अपने बारे में हम लोग को बताइए कि सर आपने आपका ये विजन ये डायरेक्शन की आप फील्ड में कैसे आए थे और कैसा विजन रहा था आपका स्टार्टिंग से?
यार स्टार्टिंग से ही मतलब बनना तो फिल्म मेकर ही था मैंने, और इनफैक्ट 12th के बाद भी मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया इंजीनियरिंग वगैरह क्योंकि मेरे को हमेशा से यही करना था। ग्रेजुएशन करनी थी तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक्चुअली बीएससी इन फिल्म मेकिंग और वो सब करवा रहे थे, तो कुछ समझ तो थी नहीं तब, कुछ हमने ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद यार एक्चुअली मैंने एनिमेशन भी किया था स्टार्टिंग में, बट मेरे को हमेशा से बहुत फैसिनेशन था फिल्म का, मेरे को सपने आते थे कि मैं कैमरे के पीछे कुछ तो कर रहा हूँ।
अच्छा,
फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि मैंने फिर 2010 में मैं मुंबई चले गया, एक साल रहा, फिर वापस आया। और उसके बाद समीर सक्सेना जो है, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, जिन्होंने परमानेंट रूममेट क्रिएट किया है, जिन्होंने ट्रिपलिंग किया है, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि तू बॉम्बे वापस आओ और फिल्म की मेकिंग शुरू कर। तो उनके पास फिल्मों की मेकिंग होती थी तो मैं वो बनाता था, और वहां से फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई। और 2013 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2013 मेरी टीवीएफ में हुआ, मैं मिला अरुण आपसे जाके और समीर भी थे, और तब टीवीएफ एक बिंदास के लिए शो करता था, चेंज जाएगा हम लाएंगे, तो उसमें मैं असिस्टेंट भी था, एसोसिएट डायरेक्टर था समीर का। और उस टाइम तक काफी ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुका था यार, मतलब वो रहता है इस इंडस्ट्री में, आप धक्के खाते हो और आपको रिएक्शन मिलते हैं। आपको एक टाइम होता था जब हम 100 रिज्यूमे प्रिंट करवाते थे और एक साथ और अलग अलग जगह जाके, मेरे को आज भी याद है, हम लोग डोर टू डोर नॉकिंग करते थे और रिज्यूमे डालते थे, और तब डिजिटल वर्ल्ड भी इतना नहीं बड़ा था, तब कुछ था ही नहीं ना, तब तो सब ऑफलाइन ही ज्यादा चलता था, और यूट्यूब की कंपनीज थी नहीं, यूट्यूब के चैनल थे नहीं कि आप जाओ और रिज्यूमे दे दो, इतना कॉर्पोरेटाइजेशन था भी नहीं तब। तो उस टाइम पे हम लोग रिज्यूमे प्रिंट करवाते थे और जगह जगह भटकते थे कि यार कोई तो ले लो, तो नहीं मिलता था, तो कई टाइम तो था यार, मतलब उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है कि हम लोग कभी कभी मैं गणेश चतुर्थी की वीडियो शूट करता था और कभी बर्थडे वीडियो शूट करी, क्योंकि पैसा तो कमाना ही है, घर वो चलाना रोजी रोटी भी थी। तो उसके बाद बहुत टाइम तक डॉक्यूमेंट्रीज भी करी यहाँ दिल्ली में रिवर बैंक स्टूडियोज में, और फिर फाइनली 2014 में यार तबीयत भी खराब हो गई, और फिर थोड़ा लगा कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि एज भी हो रही थी और कमाया कमाना भी था और पैसा कमा नहीं पा रहे थे, और तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आया तो कुछ था नहीं यार, दिल्ली में तो सब कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद यार एक्चुअली क्योंकि फैमिली पूरी गवर्नमेंट सर्विस वाली है, तो सबने बोला कि यार ग्रेजुएशन तो है, यूपीएससी ट्राई कर। मेरे फादर खुद PFS हैं, प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विसेज वाले, तो उन्होंने बोला कि ट्राई कर ले. मैंने कहा हाँ कुछ है नहीं, और उस टाइम तो मैं हताश भी बहुत हो चुका था यार कि नहीं वर्क किया तो चलो ये चीज़. तो पूरा एक साल लग के मैंने पढ़ाई करी यार यूपीएससी की और सब कुछ भूल के, लेकिन फिर प्री भी नहीं निकला, प्री में फेल हो गए. फिर लगा अब क्या करना है. तो फिर अरुणाब का फोन आया मेरे को एक्चुअली कि हम दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं, और फिर उन्होंने बोला कि तू ज्वाइन कर ले. और तब तक टाइमलाइन भी शुरू नहीं हुआ था, टाइमलाइन का आइडिया भी नहीं हुआ था. उन्होंने कहा, मैंने कहा करूंगा क्या यहाँ पे, उन्होंने कहा तू ज्वाइन तो कर फिर देखते हैं ना एक बारी. फिर ज्वाइन किया धीरे धीरे. हाँ टाइमलाइनर्स की, टाइमलाइनर्स दिल्ली में जब शुरू हो रहा था उससे भी पहले टीवीएफ का ऑफिस दिल्ली में खोलने का प्लान था. तो अरुणाब ने बोला कि यार ज्वाइन कर. मैंने कहा ठीक है करते हैं, बट करेंगे क्या. फिर धीरे धीरे जैसे टीम्स आई तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार कि कुछ करना चाहिए, एक नया चैनल खोलना चाहिए जो नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक हो थोड़ा सा. तो ज्यादातर उस टाइम पे जो चैनल्स थे वो बॉम्बे सेंट्रिक थे, इफ यू रिमेम्बर AIB और टीवीएफ तो था ही, तो बॉम्बे सेंट्रिक थे और दिल्ली का ह्यूमर पता ही नहीं था लोगों को. तो फिर हमने वहां से डिसाइड किया कि एक चैनल खोला जाए जिसका नाम होगा टाइमलाइनर्स. और पहले टाइमलाइनर्स एक वेबसाइट भी हमने बनाई थी चैनल के साथ, बस बाद में वो वेबसाइट फिर हमने बंद कर दी. बट चैनल पिक्ड अप और चैनल में वीडियोस हमारी काफी हिट हुई, और धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर हमको लगा कि यार थोड़ा एक शो भी ट्राई करना चाहिए. और वहां से फिर अरुणाब और मेरे पास एक कॉमन आइडिया था कि एक फैमिली की कहानी दिखाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग और आम आदमी फैमिली की कहानी दिखाते हैं. फिर वहां से हम लोग ब्रांड लेके आए और आम आदमी फैमिली की शुरुआत हुई, और फिर आज तो यहाँ बैठे ही. तो काफी टाइम लग गया है, मेरे को लग गए 10-12 साल लग गए टोटल.
सर इसी से जो आपने अभी लाइन बोली लास्ट की, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है. जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आपको आपको एडमायर करते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं आपके काम से, आपको देखते हुए, वो लोग जैसे आपने बताया 10-12 साल लग गए आपको, वो लोग इतना वेट नहीं कर पाते, उनको क्विक सक्सेस चाहिए होती है. होता नहीं है कि उन्होंने आपका आज का काम देखा है बट आपकी पुरानी स्ट्रगल नहीं देखी है, तो उनके लिए आपकी अ पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी कि मतलब सबर रखें.
यार मेरे को लगता है कि बिल्कुल, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. देखिए क्योंकि जो चीज जहां होनी है वही होगी. इफ इट इज रिटन इन 10 years इट विल हैपन इन 10 years, इफ इट इज रिटन इन 5 years वो 5 साल में हो जाए. बट उससे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि यार फंडामेंटल स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है किसी भी टेक्नीशियन के लिए इस लाइन में या किसी भी लाइन में, अगर वो सिनेमाटोग्राफर हो या स्क्रिप्ट राइटर हो. यार 5 साल तो स्किल सीखने में लग जाता है ना, तो वो 5 साल मिनिमम दीजिए इस लाइन को, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि ठीक है अब मैं अपना एक कुछ ट्राई करता हूँ. लेकिन पहले 5 साल सीखना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल तैयार करने बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने बोला कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली 10 साल देना बहुत जरूरी है, तब जाके ये इंडस्ट्री आपको बेनिफिट रीप करना शुरू करती है ना. क्योंकि उससे पहले तो क्या होता है कि मैं तो आजकल पूरे इंटरनेट पे देखता रहता हूँ कि यार 20-20 साल के लड़के काफी बड़े स्टार बन जाते हैं. बट वो अच्छी बात है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबका अधिकार है. और बट मुझे लगता है कि जो एक्चुअली बहुत पैशनेट है इस लाइन को लेके और जो चाहते हैं अच्छे डायरेक्टर या अच्छे एक्टर या अच्छे क्रिएटर किसी भी लेवल पे, DOPs ले लीजिए, आर्ट डायरेक्टर ले लीजिए, कॉस्ट्यूम, आई थिंक दे शुड स्पेंड मिनिमम 10 years लर्निंग द क्राफ्ट. और फिर क्योंकि ये लंबी रेस वाले घोड़े ही चलते हैं यार, यहाँ पे लंबा करियर होता है इसमें. ऐसा तो है नहीं कि 60 साल में रिटायरमेंट है. तो अगर आपको 70 साल तक अगर अपना करियर रखना है या 80 साल तक करियर रखना है, तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट दैट टाइम. एक एक्सपीरियंस भी आता है उससे आप मच्योर्ड भी होते हैं, और उससे आप फेलियर झेलने की कैपेबिलिटीज भी आती है.
अच्छा सर जैसे TVF इतना बड़ा नाम है, और पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ उससे, क्योंकि मेरा पर्सनल ड्रीम है फिल्म मेकर बनने का, इसीलिए ये पॉडकास्ट को ज़्यादा ही रिलेटेबल होने वाला है इस बार. एंड कोई भी वेब सीरीज ले लीजिए आप, गुल्लक ले लीजिए, द इंजीनियरिंग गर्ल्स ले लीजिए, या फिर TVF एस्पिरेंट ले लीजिए आप, उसमें इतना सब रिलेटेबल कॉन्टेंट कैसे हो जाता है. लाइक जो भी एक जैसे मैं एज अ ऑडियंस अगर देख रहा हूँ उसको, तो वो उसमें अच्छा मैं आपको जैसे आपने अभी TVF एस्पिरेंट की सीरीज जो आपने डायरेक्ट करी है, उसमें मैं UPSC वाला बंदा नहीं हूँ, बट मैंने उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया है उस सीरीज में देख के, तो वो चीज कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने शोज में.
यार इसका ना एक बहुत बड़ा रीजन है, इसका रीजन ये है कि TVF एज एन ऑर्गेनाइजेशन और अरुणाब जो है ना, क्या होता है कि यार हर किसी भी कंपनी में ना जो लीड कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे मूव फॉरवर्ड। बॉलीवुड की आप फिल्में देखें तो कई फिल्में होती है जिनका सर पैर नहीं होता, कई फिल्में होती है जो बहुत अच्छी होती है। जो बहुत अच्छी फिल्में होती है ना उसमें लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनका विजन होता है कि यार इस तरह की कहानियां बताना है, ठीक है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और यही रीजन है कि टीवीएफ हमेशा से वो चाहता था कहानियां कहना जो बहुत ही बिल्कुल रिलेटेबल होती हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड होती हैं। और क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी फिल्म में हम लोग इतनी सच्चाई देख पाते हैं, ये सच्चाई हम लोग सिर्फ डिजिटल स्पेस पे देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा विलिंग है वो चीज दिखाने के। यहाँ प्रोड्यूसर्स को आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए, यहाँ प्रोड्यूसर्स को चाहिए शुड बी अ गुड एपिसोड जिसमें इमोशन हो, ह्यूमन इमोशन हो, है ना। यहाँ नहीं चाहिए कि बीच में एक गाना है, आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरी है कि आप कितना इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो। क्या वो चाय की टपरी देख के यूपीएससी एस्पिरेंट छोड़ दो, क्या वो चाय की टपरी देख के कॉलेज के लड़के सीजीएल एस्पिरेंट पीओ एस्पिरेंट ये देखे थे कि यार ऐसी टपरी पे तो हम भी चाय पीने जाते थे टपरी पे। तो वो बहुत जरूरी है कनेक्ट करने की। और बिकॉज हम लोगों ने खुद वो लाइफ जी है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली, we are not born and brought up in higher societies, तो हम लोगों ने खुद वो लाइफ जी है कि जहाँ पर हम चाय की टपरी पे गए या उधार मांग के खाना खा रहे हैं, तो हम लोग वो चाहते हैं कि यार। और ये कहानियां जो है ना ये दोस्त ये सब डिस्कस करते, ऐसा नहीं है कि ये कहानियां कोई डिस्कस नहीं करता, इसलिए रिलेटेबल हो गई ना यार। आपको भी पता है कहानी कई सारी जो आप एस्पिरेंट से भी देख रहे हो, आपने भी किया है वो, बट हम लोगों ने डिसाइड किया है उन कहानियों को पर्दे पे लेके आएंगे, फर्क सिर्फ इतना ही। और रिलेटेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है कि यार जो हमें लगता है टीवीएफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यार रिलेटेबल कहानी नहीं है ना तो मतलब फिर हम लोगों को एंटरटेन कैसे करते,
राइट,
फॉर अस एटलीस्ट।
अच्छा, ये आपके टीवीएफ एस्पिरेंट की जो अभी सीरीज आई है इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया था? जब आपने ये पहली बार ये कहानी सुनी तो आपका आपका विजन क्या था कि मुझे इसको कैसे दिखाना है? बिकॉज स्टार्टिंग के सीन्स उसके प्रेजेंट में चल रहे हैं, बाकी उसमें पास्ट का दिखाया गया है, काफी अच्छा ब्लेंड हुआ है उसका, तो वो चीज आपने कैसे इमेजिन करी थी?
यूपीएससी दीपेश ने एक एपिसोड लिखा था रवीश कुमार का यूपीएससी पे, और उसके बाद एक और वीडियो आई थी जीतू की यूपीएससी पे, और उन दोनों का ना बहुत फिनोमिनल रिस्पॉन्स था। तो जो इस शो के क्रिएटर हैं शहरी और अरुणाब और दीपेश, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स क्रिएट अ शो अबाउट यूपीएससी। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट, हाँ, यूपीएससी के बारे में एक कहानी कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। इतना बड़ा सैंपल साइज है ना कि हर साल 14 लाख लोग अगर देख रहे हैं और इतने सालों से एग्जाम हो रहा है तो कितने लोग रिलेट करेंगे यूपीएससी की तैयारी से कुछ, और वो कहानी किसी ने बताई नहीं थी अभी तक। तो हमको लगा कि यार वी आर द बेस्ट वंस टू टेल दिस स्टोरी, क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा कंटेंट देखना और हम से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम कुछ ऐसा कंटेंट लेके आए। तो उन तीनों ने डिसाइड किया और तब मैं इन्वॉल्व नहीं था इस शो में। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, दीपेश ने ड्राफ्ट लिख चुका था। दीपेश राजेंद्र नगर आया, दिल्ली आके रहा है कई कई महीने, और उसने राजेंद्र नगर के कोनों में जा जाके रिसर्च करी है, दीपेश जो राइटर है शो का, और उसने कई सारे लोगों से मिला यार यहाँ पे, वो आके उसने हॉस्टल के रूम में जाके बातें करी हैं। उसकी इनॉर्मस रिसर्च थी शो को लिखने से पहले, क्योंकि वो एस्पिरेंट नहीं था। तो उसने फिर वो कहानी वीव करी, बट जब कहानी वीव करी तो उसको ये रियलाइज हुआ और शहरी को रियलाइज हुआ कि यार ये फिर से रैग्स टू रिचेस स्टोरी बन रही है, बहुत लीनियर पैटर्न चल रहा है। वो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार इसमें एक बार बहुत बेसिक ह्यूमन इमोशन मिसिंग है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ होता है कि मेरा नहीं निकला, मेरे दोस्त का निकल गया, और कैसे रिश्ता बदल जाता है। और ये एग्जाम तो ऐसा है कि अगर आपका दोस्त आईएएस बन गया तो आप ऑलरेडी नीचे आ जाते हो, आप उसको रेगुलरली फोन करके नहीं कह सकते ना और भाई क्या चल रहा है, वो नहीं कर पाओगे। तो फिर उन्होंने पास्ट वाली टाइमलाइंस और प्रेजेंट वाली टाइमलाइंस क्रिएट करी। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट हुआ यार, वो इस शो को शूट करने से करीबन 5 महीने पहले हुआ। अरुणाब ने बोला, अरुणाब को सडनली ये याद आया कि अबे अब तूने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हुई है, उससे पूछते हैं। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया कि करेगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई वॉज ब्लोन, क्योंकि मैंने तो तैयारी करी थी और मेरे को पता था देश के साथ में फिल्म्स में काम कर चुका हूँ, कौशल सर बना है वो, तो मेरे को पता था कि यार ये आदमी कुछ और लिख के आ गया इस बारी, इतना रिसर्च मतलब ब्रिलियंट है वो। तो फिर मैंने कहा यार मैं करूंगा। उसके बाद फिर दीपेश और मैं बैठे दिल्ली में, हमने कुछ कुछ और पॉइंट ऐड किए, जैसे कई सारी चीजें जो मैंने अपने टाइम पे यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे एक्सपीरियंस करी थी वो सारी चीजें हमने ऐड करी और फिर आउटपुट आज हम सबके सामने है ही।
आज सब हम लोग सब देख रहे हैं। आपने इसको कितना रिलेट किया था जब आपने स्क्रिप्ट सुनी थी?
यार मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने काफी रिलेट किया था एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंट टाइमलाइन, क्योंकि मेरा जो स्पैन था प्रिपरेशन का वो एक ही साल था, तो मेरे बहुत ज्यादा यार दोस्त बने नहीं उस पीरियड में। मेरे जितने भी दोस्त बने वो बहुत ही कम टाइम के लिए बने, एक साल बहुत कम होता है, लेकिन बिकॉज मैंने वो दुनिया देखी थी तो मेरे को पूरा वर्ल्ड पता रहा है ना, तो रिलेटेबल तो था और मेरी पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेसी वाली है तो मेरे को पता था कि हाँ ये बहुत अमेजिंग है यार। तो बट जो पास की कहानी है उससे मैंने बहुत रिलेट किया, क्योंकि पास की कहानी मैंने खुद जीती, वही उसी तरीके के कमरे में रहना, उसी तरीके की चाय टपरी बजाना, वही रोज डिस्कशन करना, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन चल रहे हैं, इंडिया पे डिस्कशन चल रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं एक दूसरे पे, रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम, तो वो तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगी थी यार। तो मैं चाहता था कि यार कि ये मैं करूं, बिकॉज वही है कि 6 साल बाद अगर कोई चीज वापस आई है ना मेरी लाइफ में, 6 साल पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो मेरे को पता था कि यार ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरे को सर्किल कंप्लीट करना है अपनी लाइफ का।
यस सर, लाइक सॉरी। अच्छा, आपका विजन क्या रहता है डिजिटल कंटेंट जब भी आप कुछ भी क्रिएट करते हैं उसके पीछे आपका विजन क्या रहता है कि आपको आप जो दिखाना चाह रहे हो वो आप उसमें इंप्लीमेंट करते हो, या फिर जो जो राइटर्स होते हैं जिन्होंने वो चीज लिखी होती है, जिन्होंने उस चीज के बारे में रिसर्च किया होता है, आप उसको एज इट इज दिखाने की कोशिश करते हो, वो आप ओरिजिनैलिटी कैसे लाते हो उस शो में?
यार ये ना बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, किसी भी देखिए राइटर जो लिखता है ना, अब डायरेक्टर का काम है उसको एक लेवल ऊपर ले जाना, वो दैट इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ डायरेक्टर, कि जो लिख दिया है उसको एक लेवल ऊपर कैसे ले जाए, और अगर क्योंकि एग्जैक्टली जो राइटर ने लिखा है वही शूट कर रहे हैं तो कोई भी शूट कर, उसमें सिर्फ कैमरा लगाना है, ठीक है। और मेरा विजन तो हमेशा से यही था, दीपेश को मैं बोलता भी था कि यार ये कुछ करते हैं इसके साथ, ट्रीटमेंट में अलग करते हैं इसको, पावरफुल इमोशनल ड्रामा बनाया जाए, क्योंकि ये कहानी वैसी है जिसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है लोगों की, यार 6-6 साल लग जाते हैं और फैमिली से नाता टूट जाता है और रिलेशनशिप्स बहुत इंपैक्ट होती हैं, तो उसको एक हायर इमोशनल ड्रामा बनाया जाए, पहली चीज तो वो थी जो हमने ट्रीटमेंट में डिसाइड करी पास्ट एंड प्रेजेंट कैसे हम शिफ्ट करेंगे, और दूसरा था कि एक्टिंग हमारा मेन फोकस जो था, स्पेशली मेरा, मैंने कहा था कि यार फॉरगेट एवरीथिंग फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग बहुत रियल होनी चाहिए यार, अगर आप पास देखोगे वो भी बहुत रियल लगता है, प्रेजेंट देखोगे वो रियल लगता है। और मैं और हमने चारों एक्टर्स के साथ, मैंने करीबन स्पेशली तीन, सनी के साथ मैंने काफी बाद में रीडिंग करी, बट बाकी तीनों के साथ मैंने करीबन 15 से 16 दिन रीडिंग करी है, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस था वो रीडिंग का, जहां हम एक दिन में रोज एक एपिसोड बार बार ही पढ़ते थे, बार बार ही रटते थे कि कैसे उसको सच बोलना है। इट कैन नॉट लुक लाइक अ डायलॉग, इट हैज टू लुक लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी राइट नाउ, तो वैसे हम उसको प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद यार शॉर्ट्स वगैरह तो देखिए दिमाग का पार्ट है, वो आप लेते हो, आप पूरा बैठते हो उसके पीछे, 2 महीने 2.5 महीने हम बैठा, मैं मेरी टीम के साथ बैठा और हम लोगों ने प्लान किया और पूरा, और उसके बाद कई सीन्स थे जो मैंने ब्यूटिफिकेशन के लिए, जैसे बारिश वाला एक सीन है जो बाद में हमने कहा कि इसको बारिश में दिखाते हैं, बिकॉज मैं बारिश से बहुत फैसिनेटेड रहता हूँ, और कई स्लो मोशन बाद में ऐड किए गए, तो वो सारी चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली विजन यार सेम पेज पे आना था पहले तो, कि यार जो दीपेश ने लिखा है पहले तो मैं वो दिखाऊंगा, फिर उसको एक नॉच ऊपर कैसे ले जाना है, अपने जो भी मेरे अंदर जो भी चीजें हैं उसको मैं बाहर कैसे ले जाऊंगा।
एंड जब मुझे सर पता चला था ये पूरी सीरीज लॉकडाउन के टाइम पे शूट हुई है, जहाँ पे सब लोग मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि सर इतनी अच्छी सीरीज, इतने मतलब जो आपने चीजें दिखाई हैं, गलियां दिखाई हैं आपने, सारी रियल लोकेशंस दिखाई हैं, सर वो कैसे आपने सब किया है था, कैसे आपने मैनेज किया था सब कुछ?
बहुत टफ था एक्चुअली, मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, मेरे को तो रोज सुबह आके एक्शन बोलना होता था, मैनेज यार टीम ने किया, और बहुत टफ था यार ये शेड्यूल, मेरे को लगता है कि आई थिंक ये लाइफ का इतने साल के करियर में मेरा टफेस्ट शूट था, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी थी ना इस शूट में कि किसी को भी अगर एक जने को भी कोरोना हो गया शूट रुक जाएगा, क्रू में फिर शूट रुक जाएगा 14-15 दिन के लिए, और पहले हमने कुछ 15-16 दिन शूट किए और उसके बाद फिर नवीन को कोरोना हो गया और फिर शूट रुक गया 15 दिन, जैसे ही वो ठीक हुआ तो अनफॉर्चुनेटली अभिलाष के फादर एक्सपायर हो गए, फिर कुछ हमने दो तीन दिन शूट रोका फिर से और फिर हमने शुरू किया. प्रॉब्लम चलो शेड्यूल्स में ब्रेक तो आते रहते हैं, मेन प्रॉब्लम थी कि यार अब वाइड शॉट ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया हमने बुक किया हुआ है ठीक है, लेकिन आप पूरी जनता को तो 100 करोड़ का बजट है नहीं कि आप पूरी जनता को रोक सकते हो या पूरा आप सेट क्रिएट कर रहे हो. अब मास्क इतने कॉमन हो चुके हैं कि एक अच्छा टेक मिल रहा है और सडनली आप देखते हो पीछे मास्क में एक आदमी बैठा हुआ. मैंने कहा यार अब ये रीटेक होना ही पड़ेगा.
सर सर वही मैं सोच रहा था कि आप जो पास का सीन दिखा रहे हो उसमें अगर कोई गलती से मास्क पहना दिख गया साइड में जाते हुए.
रीटेक आई थिंक बहुत सारे सीन्स है, 12 से 14 रीटेक्स हुए कई के सीन से ओनली बिकॉज मास्क वाला आदमी दिख गया. क्राउड कंट्रोल था हमारे पास बट एक पर्टिकुलर लोकेशन जैसे चाय टपरी जो है राजेंद्र नगर की उतने एरिया का क्राउड कंट्रोल था, लेकिन जब आप वाइड शॉट ले रहे हो तो पीछे की सड़क दिख रही है, पीछे वाला मार्केट दिख रहा है, कितनों को आप कंट्रोल करोगे. तो कई सारे कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा कि यार ह्यूंडई दिख रही है 2020 की और तो वो तो अब हमारे पास मतलब उस लेवल के बजट नहीं है कि हम पूरी राजेंद्र नगर की ओल्ड स्ट्रीट ही बुक कर लें या गाड़ियां चेंज कर लें. तो हमने अपना बेस्ट किया जो भी दिखा सकते थे और आई थिंक बट मेरे को लगता है रादर लोगों ने, सबसे अच्छी बात यह है कि कई सारे लोगों ने इनफैक्ट 99.9% पीपल हैव कनेक्टेड विद द इमोशंस देन फोकसिंग की गाड़ी कौन सी दिख रही है या पीछे रेस्टोरेंट तो था ही और वो शायद वो स्किप कर गए और इमोशंस पे ध्यान दिया.
सर सेम मैंने भी सर गाड़ियों पे इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं दिमाग ही नहीं गया गाड़ियों पे कि सर गाड़ियां भी दिखेंगी.
एक्चुअली वो हाँ वो कई लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया तो मैंने वही लिखा कि यार दोस्त के तो क्या ही करें.
राइट. अच्छा सर आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में रिलेशनशिप को काफी अच्छे से दिखाया था कि लाइक ब्रेकअप भी हो रहा है और उसके बाद आपने एक अच्छी चीज भी ये दिखाई थी लास्ट एपिसोड में कि आखिरी में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वो कुछ बदला लेने नहीं जा रहे हैं और मतलब सब कुछ अच्छे से उन दोनों की शादी हो रही है. तो वो कॉन्सेप्ट सर कैसे आया था वो, क्योंकि बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे बिल्कुल देख के जब देखा मैंने.
यार ये तो दीपेश ने लिखा हुआ था. ये दीपेश के साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ ये दीपेश ऑलरेडी लिख चुका था ये सारी चीजें. और पहली चीज ये है, दूसरी चीज वो है कि यार इतना मच्योर्ड इंडिविजुअल. पहले इस शो की ना एक खास बात ये है कि आईएएस ऑफिसर को हम एक परफेक्शन की प्रतिमा मानते हैं. करेक्ट, यही होता है ना कि आईएएस बन गया तो बहुत ही अच्छा ह्यूमन बींग होगा या बहुत परफेक्शन का एक प्रतिमा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जिंदगी. एवरी ह्यूमन हैज सम फ्लॉज और हम ये सच, क्योंकि सच तभी बनेगा जब आप फ्लॉज भी दिखाओगे. सच सिर्फ तभी नहीं बनता जब आप एक आदमी को हीरो दिखाओगे. तो ये जब हमने ये डिसाइड किया कि नहीं यार इट इज अ स्टोरी अबाउट अभिलाष एंड ऑल्सो हिज फ्लॉज, तो उस फ्लॉज का पार्ट था उसकी सारी गलतियां करना और उन्हीं उसी सच्चाई का पार्ट ये भी था कि हर इंसान से गलती होती है और इंसान कैसे उन गलतियों को भूल के मूव ऑन कर सकता है. अपना अहंकार में रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा. बट जैसे फिफ्थ एपिसोड में आपने देखा कि संदीप भाई के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और उसके बाद उसको कुछ कुछ चीजें रियलाइज होती हैं. तो असली इंसान की विन तो तभी है ना जब अपने अंदर के डीमंस को खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करे. तो हम ये दिखाना चाहते थे कि नहीं यार अभिलाष इज स्टिल अ हीरो, उसमें गलतियां करी हैं बट ही इज कम आउट ऑफ दोज एरर्स एंड नाउ ही इज बिकम अ बेटर ह्यूमन.
उसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी किया है
ऐसे, और सबसे बड़ा हीरो तो वही होता है ना यार.
हाँ राइट सर. अच्छा जो आज की जो प्रेजेंट रिलेशनशिप चलते रहते हैं आजकल स्कूल कॉलेजेस के, जब उनके ब्रेकअप्स होते हैं तो वो काफी शायर आयर बन जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी जो वो पॉजिटिव रहे और लाइफ
यार enjoy. वो कुछ एडवाइस नहीं होगी. आई थिंक सब अपने टाइम पे वो एक्सपीरियंस करते हैं, सब निकल जाए. कुछ एडवाइस नहीं दूंगा, ये वैसी वाली चीज है कि रैंडम इतना बूढ़ा मत बना कि मेरे को वो एडवाइस देना पड़े. हम सर ने वो किया है और आई थिंक सब निकल जाते हैं उस फेज पे यार. आई थिंक एवरीबॉडी कम्स आउट ऑफ दिस. हाँ मेरे को लगता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा सीरियस हो जाते हैं. आई थिंक उनके लिए मैं ये कहूंगा कि यार लाइफ बहुत आगे बहुत ब्यूटीफुल है आगे और थोड़ा और टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा.
अच्छा सर मुझे उड़ती खबर मिली थी कि सीजन फिनाले के एक रात पहले आपके घर में ससुराल सिमर का सीजन 2 चल रहा था.
हाँ वो मेरी वाइफ देख रही थी.
तो सर आप
एक्चुअली
हाँ
करण है ना, करण जो उसका लीड है वो वाइफ का फ्रेंड भी है.
अच्छा
कजन भी है और एक तो वो भी थी और वो फ्रस्ट्रेटेड भी थी कि तुमने सात के बदले 10 दिन में फिनाले निकाला तो अब मैं ससुराल सिमर कर.
अच्छा आप, हाँ हाँ आपने माइलस्टोन शायद से रखा था कि 10 मिलियन पे आप निकालोगे, बट आपने जल्दी निकाल दिया था।
नहीं, उसका जो 10 दिन का रीजन था उसका रीजन 10 मिलियन वाला नहीं था दोस्त, क्योंकि हमने कभी पिछले 4 एपिसोड्स में भी हमने अपना टारगेट पूरा नहीं होता एपिसोड रिलीज किया था। 10वां दिन का रीजन ये था क्योंकि फिनाले ना कॉम्प्लिकेटेड था एडिट करना भी, और लॉकडाउन लग चुका था तो म्यूजिक रेडी नहीं हुआ था, एडिट में काफी सारी चीजें चेंज होनी थी, साउंड डिजाइनिंग नहीं हो रखी थी, और लॉकडाउन के चक्कर में क्या हो रहा था कि स्टूडियोज हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए मिल रहे थे, बॉम्बे चेन्नई जहां पर भी हमारा काम हो रहा था। उस चक्कर में जो चीज 2 दिन में होनी थी वो 6 दिन में हो रही थी, तो इस चक्कर में हमने कहा कि नहीं लेट्स टेक टाइम। और उसका रीजन सब्सक्राइबर्स से नहीं है, उसका रीजन टेक्निकल है लगभग।
ओके, अच्छा सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी हम लोग को आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है आपकी तरफ से?
यार शोज के नाम तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, बट हाँ मतलब इस साल आप मेरे 2 और अच्छे शोज देखोगे टिल आई थिंक दिसंबर, दिसंबर तक 2 बहुत अच्छे शोज और आएंगे मेरे। और प्लस ऊपर जितने भी शोज लगे हैं उनके होपफुली नेक्स्ट सीजन भी आएंगे, तो काफी सारी चीजें हैं यार। और टीवीएफ खुद भी इस साल हम लोग मिलके लग रहा है बहुत सारे शोज करने वाले हैं, और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी वी विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन टीवीएफ फिल्म, थिएट्रिकल फिल्म, तो वो भी एक अच्छी न्यूज है हम सबके लिए। तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं अभी, और जेन्युइनली आई थिंक दिस इज टीवीएफ मोस्ट ब्यूटिफुल ईयर, क्योंकि हमारे बेस्ट शोज के नए सीजन आएंगे, हमारे नए सीजन आएंगे, हमारे बहुत सारे जॉनर्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यार। वी आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू कॉमेडी, और हम लोग बहुत कई सारे जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग ड्रामा, वी आर एक्सप्लोरिंग आई थिंक हॉरर, वी आर एक्सप्लोरिंग साइंस, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं।
सर मैं ये कह रहा था कि आई होप कि जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए और काफी कुछ नया देखने को मिले जल्दी जल्दी।
अच्छा वेट हो रहा है, मैं तो अभी एक्चुअली अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अपने दूसरे शूट की फ्लोर पे जा रहा था, शूट चालू होने वाला था। बट ठीक है, लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा रिलैक्सेशन जोन में हूँ मैं अभी भी, और जैसे ही खुलता है फिर मेरा शूट शुरू हो जाएगा।
अच्छा सर एक छोटी सी हिंट दीजिए सर, अगर आप देना चाहते हैं सर, मैं ये टीवीएफ एस्पिरेंट्स का क्या सीजन 2 देखने को मिल सकता है फ्यूचर में? सर मैं
बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इतना इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं होती, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मैं इसमें कुछ छुपा के बहुत मजा आ रहा है हमको, तो इतना सब लोगों ने प्यार दिया, आई थिंक सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं ऑडियंस का होता है, इतना हमको लव मिला है शो से, तो यस वी विल मेक अ सीजन 2। उसमें बस एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पिलर होता है ना टीवीएफ के शोज का, वो होता है राइटिंग, जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि अगर शो लिखा हुआ अच्छा नहीं होगा ना तो वो कभी बनेगा नहीं। तो इसलिए वो हम इसलिए टाइम लेते हैं क्योंकि वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग द शोज, और जैसे ही लिखाई खत्म होगी सीजन 2 की हम तुरंत शूट करके एडिट करके आपके सामने सीजन 2 ले आएंगे। बट यस सीजन
सर मैं
डेफिनेटली कम 2000%, दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम मी।
ओके थैंक यू सर। सर मैं काफी मतलब कानों को सुकून मिला है। अच्छा सर आपके जो वेब सीरीज आती हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रियल लाइफ में कहीं घूम रहे हो, कहीं आपकी नजर पड़ी हो किसी आदमी पे या फिर किसी बंदे पे, उसका कैरेक्टर आपको अच्छा लग गया हो और आप
दोस्त? वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होता है।
अच्छा
एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये कि यार ऑब्जर्वेशन करनी बहुत जरूरी किसी भी डायरेक्टर के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। आई कांट टॉक अबाउट अदर डायरेक्टर्स, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार कि जितना हम ऑब्जर्व करेंगे राह चलते हुए उतने ज्यादा आपके कैरेक्टर्स निखर के आएंगे, क्योंकि देखो पनवाड़ी भी 10 तरीके के होते हैं, आपके घर के नीचे वाला पनवाड़ी और मेरे घर के नीचे वाला पनवाड़ी अलग अलग होंगे, तो दोनों को ऑब्जर्व जितने अच्छे से करोगे ना उतना आप क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हो और आपको पता है कि आप क्या एक्टिंग निकलवाओ इससे, तो आपके पास रेफरेंस होते हैं, एवरीथिंग हैज अ रेफरेंस, आप बिना रेफरेंस के कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास
सर मैं
कोई चीज आपको कहता है यार पनवाड़ी बड़ा फनी है वो, तो आप उसका कहोगे कि यार मेरा पनवाड़ी ना ऐसे करता है तो ऐसे कर सकता है क्या? तो वो
सर मैं
इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज द की इन दिस इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है चीजों को, बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है चीजों से, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आपका फिर आउटपुट में बड़ा सारा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि खूब सारी फिल्में देखें, अच्छी फिल्में देखें, खराब फिल्में देखें, इरेलेवेंट है वो चीज, बट फिल्में देखना बहुत जरूरी है, लगातार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होती है, उससे बहुत सारी चीजें आप समझते हैं,
राइट,
ऑब्जर्वेशन बढ़ानी बहुत जरूरी है।
इसी से कनेक्ट करता हूँ, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई नॉट बॉलीवुड मूवीज?
यार वो भी जल्दी होगा, और आई थिंक यार मेरे को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मूवीज इज एक टर्म बोलना ना, उसको बढ़ावा देना, मेरे को लगता है कि आई थिंक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज आल्सो क्वाइट ग्रेट, और मैं कभी चाहता भी नहीं उसको वैसे कंपेयर किया जाए, बिकॉज जिन रिसोर्सेज पे हम एस्पिरेंट जैसा शो दे रहे हैं ना जनता को, आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड कैन एवर डू दैट, है ना, और फ्री में तो बॉलीवुड कभी भी नहीं देगा वो शो, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग सेम पेडिस्टल पे हैं, बस मीडियम्स अलग हैं, हम लोग यूट्यूब पे हैं और बॉलीवुड थिएटर्स पे हैं, और बहुत जल्द यू विल सी अ फिल्म, अ टीवीएफ फिल्म ऑन थिएटर। अब उसको बॉलीवुड का नाम दिया जाएगा तो वो पता नहीं कि अब टीवीएफ भी बॉलीवुड हो गया, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक टीवीएफ की फिल्म होगी, थिएटर्स पे हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो, बट फिल्म जरूर होगी। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी भी देखो ना, तो ये पूरा 250 मिनट का कंटेंट है ना, अब 250 मिनट का कंटेंट आपका कितना हो गया, कितने घंटे की फिल्म होगी, चार घंटे की फिल्म होगी, करेक्ट। तो यार अगर आप एपिसोड्स ना काटो तो 4 घंटे की फिल्म बनाई है हमने, वो तो वही डिफरेंस है यार, बस हमारी फिल्में जो होती हैं, हमारे शोज जो होते हैं, वो आप लैपटॉप से देख रहे हो, बाकी आप थिएटर पे देख रहे हो, लेकिन स्केल में कोई फर्क नहीं है, तो जीरो फर्क है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अब तक सबसे आपके फेवरेट लोग कौन है जिनके साथ आपने काम किया है, एक्टर्स हो गए, टीम में कुछ लोग हो गए आपके, गिने चुने? सर मैं अनमोल रत्न कौन से हैं जिनके साथ आपने, जिनके साथ आपको काम करने में अच्छा लगता है?
यार मेरी सर मैं पूरी मेरी टीम है, उनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ, और उसके अलावा एक्टर्स की बात करूँ तो मेरी दिल्ली वाली टीम ही है जो मेरे हमेशा साथ रही है, और आई थिंक उसके बिना तो ये पॉसिबल भी नहीं होता। दूसरी चीज है कि एक्टर्स की बात करें तो यार मैंने इतने सारे शोज किए हैं, और
सर मैं
एवरीबॉडी फ्लेम्स हो गया, एस्पिरेंट्स हो गया, आम आदमी फैमिली हो गया, इंजीनियरिंग गर्ल्स हो गया, सब इतना मतलब
सर मैं
गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि स्पेशली विद एस्पिरेंट्स एंड फ्लेम्स आई वुड लाइक टू से दैट, बिकॉज इनफैक्ट इवन फ्रॉम आम आदमी फैमिली चंदन हो गया यार अच्छे एक्टर्स मिलना ना डायरेक्टर के लिए बोलते हैं ब्लेसिंग है, ठीक है, क्यों, उसका एक रीजन है कि अगर आपका एक्टर सेट पे टेंट्रम दे रहा है ना, यू विल नेवर बी एबल टू डायरेक्ट इट सो नाइसली। एस्पिरेंट्स और बाकी जिन शोज की मैं बात कर रहा हूँ, उन शोज में क्या होता है ना कि समर्पित कर देते हैं एक्टर, जैसे एस्पिरेंट्स में इन सारे लोगों ने समर्पण कर दिया कि अब आप देख लो यार, हम तो आ गए सेट पे, एक्टिंग आप निकलो, जीरो टेंट्रम्स, नो एटीट्यूड, और मैं बोलूं यार 5 मिनट में सेट पे आओ तो 5 मिनट में सेट पे हाजिर, ऑलवेज ऑन टाइम ऑन सेट,
सर मैं
कोई चपड़चू नहीं, तो दे आर
सर मैं
फुल जिनकी वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए ना इस तरीके के एक्टर्स मिलना, और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि तब आपका ना दिमाग खुल जाता है कि ठीक है अब मेरे कम्फर्ट लेवल पे आ चुके एक्टर्स, अब मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ, लेकिन जहाँ सामने वाला एक्टर माहौल दे रहा है ना आपको, आप कभी अपना बेस्ट नहीं निकलवा पाओगे, बिकॉज आप हमेशा कहोगे यार ये सुनी नहीं रही मेरी बात में, क्या कोई लेट आ रहा है, कोई खाने को लेके टेंट्रम्स दे रहा है, कोई एसी की हवा को लेके टेंट्रम्स दे रहा है।
सर मैं
तो आई थिंक बहुत ब्लेसिंग होती है किसी भी डायरेक्टर या किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए,
अच्छा सर मैं
एंड आई एम लकी फॉर अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाई उसका जो आउटपुट आया उन सारे शोज का, इट्स ब्यूटीफुल।
Okay, nice, sir. अच्छा सर, एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा पर्सनल भी है मेरे लिए, आपकी लाइफ से पर्सनल है, मेरी लाइफ से है। सर जो एक सीन आया था टीवीएफ एस्पिरेंट में, जब संदीप भैया की कन्वर्सेशन चल रही थी कि पैसे नहीं थे मेरे पास इसलिए मैंने कोचिंग नहीं ली, वो सीन काफी इमोशनल था मेरे लिए और काफी सारी ऑडियंस के लिए भी होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सीन को डायरेक्ट कर रहे हैं और उसको देख के कभी आप भी इमोशनल हो गए हो, ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ है?
मेरे साथ नहीं होता, बट हाँ 2 बार ऐसा हुआ है कि इमोशनल हो गया। एक प्लेन में फोर्थ एपिसोड सीजन टू, याद है प्लेन का?
नहीं सर।
सीजन टू में, उसके सीजन टू में तानिया रोती है फ्लेम में, तो एक वो सीन था और एक सनी वाला सीन था प्लस द ब्रेकअप। उसमें पूरा सेट भावुक हो गया था जब इन लोगों ने परफॉर्म किया था। मैं पर्सनली नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सारे लोग जितने भी सेट पे थे वो भावुक हो गए थे। तो यस हाँ, ये एक्टर की ब्रिलियंस ही होती है कि यार अगर आप सेट पे भावुक कर रहे हो ना, फिर उसको एडिटिंग में म्यूजिक लगा के यू कैन एम्पलीफाई दैट इमोशन। बट ये एक्टर की ब्रिलियंस है कि अगर वो सेट पे भावुक कर पा रहे थे यार।
राइट। अच्छा सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस पॉडकास्ट का। हम लोग बिल्कुल लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं हम लोग, जिसमें सर जब मैंने
करवाइए दोस्त।
नहीं नहीं सर,
एक्टिंग
नहीं करवा रहा हूँ सर, मैं एक्टिंग नहीं करवा रहा हूँ। जब सब लोगों को पता चला कि सर मेरा हमारे हम लोग के शो में आपका आप गेस्ट आ रहे हैं, तो एक बंदा है जिसने मतलब चढ़ गया था कि मतलब सर मुझे बस एक बार सर से बात करवा दो मिनट का सिर्फ सेगमेंट होना होगा वो, तो उसने काफी कुछ प्रिपेयर करके रखा है। तो सर आपकी परमिशन हो तो बस मैं उसको ओके थैंक यू सर। सर मैं
सर मेरी बात सुनना सर, हम लोग कसम से ना, हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, मैंने बहुत ट्राई किया उसको बात करने का, मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी किसी भी तरीके से, मैंने लास्ट कॉल उसी को लगाई है, मेरे उसे कॉल नहीं उठा सर। सर अंकल आप जाओ, हम लोग पुलिस वाले के साथ हम लोग आ रहे हैं अंकल, ठीक है? अरे लड़की का बाप है ना इंस्पेक्टर, अभी थोड़ा गुलाटी मारेगा। अरे इंस्पेक्टर तू क्यों टेंशन ले रहा है, बैठ जा। तो बात ये है इंस्पेक्टर कि लड़की को तो हम ही मारे, और पता है क्यों? अरे बर्थडे था हमारा, हमसे बोली कि साथ में चलना है हमको, साथ में घूमना है फिरना है, तो हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन दारू पी के हम थोड़ा सा टच भी ना करे तो गलत है ना, तो हमने कह दिया अरे इधर आ जाओ हम भी संभाल देते हैं, तो साला यहाँ पे थप्पड़ मारने लगा, रखे कनपट्टी के नीचे एक लगा के, फिर उसके बाद जब वो आई थी ना, इसीलिए कहते हैं लड़कों का ना ईगो नहीं हट करने का, अगली बार याद रखेगी। तो ये एक एक्ट था, मैंने मेल ईगो भी प्रिपेयर किया था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं टैग भी करूंगा आपको, तो फिर मैंने ऐसी
देखा भेजा हुआ है ना।
हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी मैंने बनाए ना फटाफट से उसमें आपके सामने परफॉर्म करूंगा मैं एक बार।
बढ़िया
सर भाई, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स, और सर से जो भी क्वेश्चन हो जाके पूछो सर, आप रिप्लाई कर दोगे ना हम लोग की ऑडियंस को?
यार मैं कोशिश करता, एक्चुअली मैं कह नहीं पाता, मैं चाहता हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन इतने सारे आ जाते हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता वो, बट जितने से भी हो पाता है मैं करूंगा।
तो मैं आसान कर देता
हूँ, अगर कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो जरूर रिप्लाई होगा, कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट आएगा तो जरूर रिप्लाई कर पाऊंगा।
हाँ सर, मैं वही बोल रहा था, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, हो सकता है सर आपको रिप्लाई करें, आपको हार्ट दे दे। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा सर से बोलने की कि सर आप चेक करते रहना कमेंट्स बीच में, जो भी लोग कमेंट्स करेंगे। एंड सर बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके, और बहुत ही रिलेटेबल लगा आपसे बात करके एज ए डायरेक्टर सर। पहली बार किसी डायरेक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करने में कुछ अलग ही फील आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा नर्वस भी हो रहा था मैं बीच में। एंड सर काम बहुत ही अच्छा है,
आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कीप डूइंग दैट, और आपका काम भी बहुत अच्छा है यार, कीप डूइंग दैट और यही करते रहो, ऐसे ही चैनल अपना बड़ा करते रहो।
थैंक यू सर। अच्छा सर, लास्ट में बस जो पैंडेमिक चल रहा है सर, उसके लिए आप एक बार हम लोग की ऑडियंस को एक मैसेज दे दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ प्लीज फॉलो करें और जितना हो सके घर पे ही रहें।
आई थिंक ये बहुत ज्यादा हम लोग बोल चुके हैं, और फिर से मैं बोल दूंगा कि प्लीज घर पे रहें, सेफ रहें, और अपने परिजनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि चारों तरफ से जो खबरें आ रही है ना वो खराब ही आ रही है। और वो जितनी बारी आप सोशल मीडिया खोलते हो ना, आप किसी के बारे में पढ़ रहे होते हो, तो यार वो सैड तो है। आई होप सब सेफ रहें और जल्दी से आपदा निकले, बट जरूरी है कि यार एटलीस्ट अपना सेफ रहना जरूरी है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपनी तरफ से सेफ्टी हम करके रखेंगे, और अपने हाथ धोने हैं, मास्क पहन के, डबल मास्क पहने, वैसे तो घर से बाहर निकल के आई एम श्योर अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो भी जा रहे हैं वो डबल मास्क पहनना बहुत जरूरी है उनके लिए, और हाथ धोने बहुत जरूरी है, अपने आप को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, घर आ रहे हैं तो उसके बाद वॉशरूम जाके अपने आप को नहाना, कपड़े अलग से रख देना, वो सारी चीजें जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आई थिंक इन सब में सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है जरूरी है, इट इज हेल्पिंग अदर, क्योंकि हम लोग उस पोजिशन पे हैं जहाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं। और आप जरूरी नहीं है कि लोगों को दिखाएं करते हुए, अगर आपका आप वो कहते हैं ना कि चैरिटी अगर राइट हैंड से करिए तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता लगना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज चैरिटी नहीं भी करनी है मत करिए, बट किसी की हेल्प जरूर करिए यार, क्योंकि सभी कई लोग ना बहुत सारे परेशान है, और हम लोग अगर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं इस आपदा के बीच में, आई थिंक हमसे ज्यादा ग्रेटफुल कोई नहीं है, और आप लोग अगर देख रहे हैं तो आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं उस ग्रेटफुल पोजिशन पे हैं कि आप इंजॉय कर पा रहे हैं पॉडकास्ट देख के, तो उस ग्रेटफुलनेस के साथ उस एटीट्यूड के साथ आई थिंक छोटी सी हेल्प करना किसी की जरूरी है। तो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई SOS मैसेज आता है और आपको जेन्युइन लगता है, आपको सिर्फ शेयर करना है, और आपको आपको हमारे साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और अगर हम पढ़ते हैं उसको तो हम उसको रीशेयर करेंगे ताकि किसी की मदद हो जाए। तो यही मैसेज देना चाहता है यार मैं, और प्लीज बी सेफ, और होपफुली जब टाइम अच्छा होगा तो और अच्छे शोज आपको देखने को मिलेंगे, एंड आई विश यू द बेस्ट।
थैंक यू सर फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज, और इसी नोट के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर जब भी सर का कुछ भी नया वर्क आएगा, कुछ भी नया कॉन्टेंट आएगा, ट्राई करेंगे एक छोटा सा सेगमेंट लाने के लिए, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो सर।
थैंक यू आर्यन।
सर मैं इंस्टा स्टोरी के लिए
यार दोस्त तुम तो ले लो यार, तुम तो ले लो।